प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 1 अगस्त 2017 है, यानी कि अगस्त का पहला दिन। और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जिस विषय का चुनाव किया है, अगर उसे आप कोई शीर्षक ही देना चाहें, कोई नाम ही देना चाहें, तो आप कह सकते हैं मानसिक गुलामी से मुक्ति। जो हमारी जो साइकोलॉजिकल स्लेवरी है, अगर मैं मानसिक गुलामी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप इसको मेंटल स्लेवरी, थॉट्स लेवल की स्लेवरी से ज्यादा अच्छा शब्द होगा अगर इस्तेमाल करें साइकोलॉजिकल स्लेवरी। विचारों के स्तर पर भी आप ये बात कह सकते हैं कि हम सब मूलतः फ्रेंड अपने अपने विचारों के गुलाम होते हैं और अपने अपने मनोविज्ञान के गुलाम होते हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हम अपने उस गुलामी को नहीं देख पाते, और यही एक वह तथ्य होता है जो हमारी पूरी जिंदगी का निर्धारण कर देता है। चाहे वो हमारे जीवन की उपलब्धियां हों, चाहे दूसरों के साथ हमारे संबंध हों, चाहे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, हमारा व्यवहार हो, कंडक्ट, सारी चीजों का निर्धारण ये हमारी मानसिक स्थिति करती है, समझ लीजिए। और अगर वो गुलामी के स्टेज पर है तो फिर समझ लीजिए कि वो एक बहुत ही नकारात्मक स्थिति है, और हम चाहे फिर कुछ भी क्यों न करें, लेकिन वो जो गुलामी है अंततः हमें कहीं ना कहीं हमारी सारी क्षमताओं को सीमित कर देती है, हमारे जीवन जीने के अंदाज को बिल्कुल ही बदल देती है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं या दासता की बात करते हैं, गुलामी की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान अक्सर ऊपरी गुलामी पर जाता है। जैसे हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम एक गुलामी के खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे, और वह था कि अंग्रेजों ने हमें राजनीतिक रूप से गुलाम बना रखा है और हमें इस गुलामी से मुक्ति हासिल करनी है, राइट। फिर बात आ जाती है आर्थिक गुलामी की, फिर बात आ जाती है सामाजिक गुलामी की, फिर आ जाती है सांस्कृतिक गुलामी की। इन सब की भी बात हम करते हैं और कहीं ना कहीं उसे आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि अच्छा, ये हमारी आर्थिक गुलामी है, हमें हमसे काम लिया जा रहा है लेकिन उसके बदले में उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है, या अर्थतंत्र पर कुछ ही लोगों का अधिकार हो गया है तो हम उसे आर्थिक गुलामी का नाम दे देते हैं। अगर सत्ता पर कुछ ही लोगों के अधिकार हैं तो हम उसे राजनीतिक गुलामी का नाम दे देते हैं। तो इस रूप में जो ऊपर गुलामी दिखाई दे रहे हैं उन्हें तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन पर खूब चर्चाएं भी होती हैं, आप लेख भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी जो मनोवैज्ञानिक गुलामी है, जो मानसिक गुलामी है, जो विचारों के स्तर की गुलामी है, उस पर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता। और सच पूछिए, जो कुछ ऐसे देश रहे हैं जिनमें खासकर कम्युनिस्ट कंट्री ज्यादा रही हैं, वहां एक और क्रांति की बात होती है। अक्सर आप अगर विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवोल्यूशन। बेसिकली कल्चरल रिवोल्यूशन क्या है? कल्चरल रिवोल्यूशन का ऊपरी मतलब तो ठीक है कि आपके पहनावे बदल गए, खान पान बदल गया, लेकिन जो सही मतलब है वह है कि आपकी सोच बदल गई। तो जो कम्युनिज्म जहां जहां आया, जो कम्युनिस्ट कंट्री रहे, वो ये जानते थे कि अगर हमने ऊपरी ढांचा तो बदल दिया, सत्ता का ढांचा तो परिवर्तित कर दिया है, लेकिन अगर हमने लोगों के सोचने समझने के तरीके को नहीं बदला, उनके चेतना में बदलाव हम नहीं ला पाए, तो फिर यह तंत्र जो हमने एस्टेब्लिश किया है बहुत लंबे समय तक रहेगा नहीं। तो उन्होंने फिर एक सांस्कृतिक क्रांति का नाम दिया कि नहीं, लोगों के सोचने के तौर तरीकों में ही बदलाव लाया जाना चाहिए। तो मित्रों, आज मैं इसी पर थोड़ी सी आपसे बातें करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लाइफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक बात अक्सर कही जाती है कि आप अपने विचारों को बदल दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी, विचार जितने बड़े होंगे जिंदगी उतनी बड़ी होगी, आप किसी भी स्थिति में रह करके खुश अपने अंदर महसूस कीजिए तो खुशी आ जाएगी, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सत्ता है, संपत्ति है, सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वह है खुशी, तो खुशी क्यों नहीं है। तो फिर ये एक शब्द आ जाता है कि खुशी तो बेसिकली आपका एहसास है, अगर आप अनुभव कर सकते हैं अपने अंदर तो आप खुश हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप दुखी हैं। इस तरह की बातें हम खूब सुनते हैं और ये सच भी है, केवल सुनने की बात नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उन्होंने उसका अनुभव किया है, कहीं ना कहीं उसको महसूस किया है, वो इसलिए इस बात को इतने दमखम के साथ कह पा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अभी तक तो ठीक है, विकास का इंडेक्स चलता रहता था, भूटान ने हमें एक हैप्पी इंडेक्स भी दे दिया है कि ठीक है आर्थिक स्थिति तो जीवन स्तर किसका क्या है वो तो समझ में आता है, उसका संबंध तो संपत्ति से है, लेकिन क्या सच में वह संपत्ति उन्हें खुशी दे पा रही है? हो सकता है कि जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं या मिडिल लेवल पर हैं, खुशी के मामले में वो बहुत आगे हों। तो भूटान के नरेश ने एक हैप्पी इंडेक्स दिया, और सच पूछे तो जब उन्होंने हैप्पी इंडेक्स दिया तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मची कि नहीं, ये जो खुशी है इसका मूल्यांकन सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता कि सबका जीवन स्तर कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो जीवन स्तर ऊंचा है, और अगर वो कम है तो जीवन स्तर नीचा है। हैप्पी इंडेक्स ने पूरी दुनिया का ध्यान अलग दिशा में ले जाने का बहुत ही जबरदस्त काम किया है, और अब इस दिशा में काम भी होने लगे, यूएनओ भी इसके बारे में सोचने लगा है। तो दोस्तों, फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पर भी थोड़ी सी बात की जाए। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस पृष्ठभूमि में हम लोग अब थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारा जो मन का विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है, ये आता कहां से है? मैं उसके वैज्ञानिक पक्ष पे नहीं जा रहा हूं, है ना, कि जीन्स से आता है, उसका कैसे निर्माण होता है। मैं विज्ञान मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में इस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही व्यावहारिक रूप में इस पर बातें करना चाहूंगा। चलिए, हम सब जिसे महसूस करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स भी जिन चीजों को जानते हैं, और वह है हमारी परवरिश। जब हम छोटे होते हैं तो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, जैसा हम अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं, उन सब से हमारे मनोविज्ञान का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स, जब हम छोटे होते हैं तो यूं कह लीजिए कि स्लेट बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल साफ है, उस पर अगर आप हल्की सी भी लकीर खींच देंगे तो वह स्लेट में उभर जाएगी, दिखाई देने लगेगी। और मुश्किल यह है कि जो ये लकीर खींच दी जाती है वो इतने गहरे खींच चुकी होती है, क्योंकि मिट्टी गीली है, वो इतने गहरे खींच चुकी होती है कि फिर उससे मुक्ति पाना उतना आसान नहीं होता, यहां तक कि वो हमारे जीवन का संचालन करने लगती है। ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, चाहे हमारे माता पिता का व्यवहार हो, हमारा पारिवारिक वातावरण हो, हमारे दोस्त हो, हमारा पड़ोस हो, हमारा गांव हो, यहां तक कि हमारी अपनी शिक्षा हो, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह की किताबें हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह की चीजें हमको पढ़ाई जा रही हैं, सच पूछे तो वही हम बन जाते हैं। आप देखिए कि इन सब का कितना जबरदस्त असर होता है। इन आतंकवादियों को देखिए, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि ये किसी के दिमाग को, नए नए युवाओं को ये भर्ती करते हैं, स्वप्न दिखाते हैं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और वहां ये सुख होंगे, और किस तरीके से उनके दिमाग को बिल्कुल इतना बदल देते हैं, बिल्कुल बदल देते हैं। ऐसा लगता है कि उस दिमाग को हटा करके, ऑपरेशन करके, उनके दिमाग में एक नया दिमाग, उनके खोपड़ी में एक नया दिमाग डाल दिया गया है, और वो उसके लिए मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, आत्मघाती दस्ते बन जाते हैं, वो खुद को एक बम में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। मतलब इतना ज्यादा उनके दिमाग को परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब उन्हें इतना क्रूर बना दिया जाता है कि चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, या एक आदमी ही क्यों ना हो, अच्छा खासा आदमी है, उसके जीवन को खत्म कर देने में उन्हें खुशी महसूस होती है, सोच के देखिए। और इसी धरती पर ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा अगर किसी बात की वजह से किसी के दिल को ठेस भी पहुंचा देते हैं तो दिन भर फिर उसका अफसोस मनाते रहते कि मैंने ये बात क्यों कह दी। तो आप देखिए कि जो दिमाग की जो रेंज है, मतलब मनोविज्ञान की जो रेंज है, वो कितनी जबरदस्त है, नंबर वन। नंबर दो, कि जो मनोविज्ञान है वो ठीक है, जन्म में जीन्स के माध्यम से जो भी चीजें हमें मिली हों, बायोलॉजिकली जो भी चीजें मिली हों, लेकिन उसका जो निर्माण हो रहा है, चाहे वो संस्कार के रूप में हो रहे हों, चाहे विचारों के रूप में हो रहे हों, चाहे आचरण के रूप में हो रहे हों, वो सब हमारे वातावरण से हो रहे हैं, यानी कि वातावरण हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, पहला लेसन तो फिर सच पूछे इससे हमारे पेरेंट्स के लिए होता है। हम वो सब जो पेरेंट्स हैं, हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, ये नहीं है कि मैं उन्हें IIM IIT पढ़ा करके, MIT भेज करके, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भेज करके बहुत अच्छा बना लूंगा, मैं बना लूंगा पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल करके वो बहुत कमाने लायक बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेंगे, सीईओ बन जाएंगे, राजनेता कुछ भी बड़े बड़े लोग बन जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनमें मनुष्यत्व कितना है, ह्यूमैनिटी कितनी है, वो आदमी कैसे हैं, इंसान कैसे हैं। क्योंकि जो वो अपने जीवन में जो महसूस करेंगे वो इंसानियत के बतौर महसूस करेंगे, सीईओ और इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के तौर पे महसूस नहीं करेंगे। वो तो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन है। तो जिंदगी में जो महसूस होता है, जो हमारे खुशी का आधार होता है, क्योंकि हम उतना ही खुश हो पाते हैं जितने खुशी को हम महसूस कर पाते हैं, चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो। देखिए, जो भी चीज हमारे पास है, हमारी खुशी का अनुपात हमारे केवल एहसास के अनुपात के समकक्ष होता है, समानांतर होता है, समतुल्य होता है। जितना हमारा एहसास अच्छा है उतनी ही मात्रा में हमारी खुशी है, और यह जो ह्यूमैनिटी जो इसी जिससे हमें यह मिलती है वो सबसे बड़ी बात है। तो वो आएगी कहां से? तो मित्रों, मुझे लगता है कि एज ए पेरेंट्स हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस वातावरण की बात कर रहा हूं उस वातावरण में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मकान हो, मकान छोटा ही क्यों ना, झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन झोपड़ी भी तो साफ हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है, झोपड़ी ही है तो कोई बात नहीं। हमारे संत महात्मा तो जिन्हें राजमहल में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता था, कुटिया बना बना करके रहते थे, क्योंकि वहां उन्हें एक अतिरिक्त सुख मिलता था। तो सवाल पैसे का है ही नहीं, देखिए सवाल केवल वातावरण उपलब्ध कराने का है, माता पिता के घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनका आपस में व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, क्योंकि बच्चा उसे देख रहा है और उसके दिमाग में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और ऑडियो विजुअल फॉर्म में रिकॉर्ड हो रही है। वो जो देख रहा है वो दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा है, वो दृश्य रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो जो सुन रहा है वो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और यही उसके दिमाग में रच बस जाता है, या यूं कह लीजिए कि बचपन की एक फ्लॉप या पेन ड्राइव उसके दिमाग में चली जाती है, वहां स्टैब्लिश हो जाती है, और वही फिर बदल बदल करके पूरी जिंदगी भर गूंजती रहती है, और वही उसका मनोविज्ञान होता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं इतनी ही बातें करना चाहूंगा, कल हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और आप लोगों से आपके अपने अपने विचार आमंत्रित हैं, आप लोग मुझे बताएं, और उसमें से मुझे कुछ बातें अच्छी लगी तो मैं यहां आप लोगों के सामने उनके बिहाफ पर यहां रखना चाहूंगा, और हो सकता है कि मुझे भी उसमें से कुछ नई चीजें जानने का मौका मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।